Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Vijana Vallabha Giribhadra Dhari. Vijana Vallabha Giribhadra Dhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanatari. Yamuna Tira Vanatari. Krishna, 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram,
స్వామి శీల ప్రభుపాదికి అనంత కోటి వైష్ణవ భక్తవిందకి జయ శీల ప్రభుపాదికి నితాయ గౌర ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాముదీరయే నష్ట ప్రాయేషు అవత్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నష్టికే ఉమజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాకయ కచ్చురుల్మిలితమందేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. యం ప్రవ్రజంతమనుపైతమపైతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతర ఆజుహావ పుత్రేతి తన్మతయాతరో వినేదుస్తం సర్వభూతహృదయం మునిమాన తుష్మి. హరే కృష్ణ. तो आज बहुत ही पवित्र दिन है. मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन पे हमको गणेश जी के बारे में कुछ पढ़ने और कुछ सुनाने और सुनने का भी मौका मिला. मैंने विचार किया तो जन्माष्टमी से पहले ही कि ये जो तिथि आ रहा है गणेश चतुर्थी, इस दिन पे निश्चित रूप से हम गणेश जी के बारे में सुनेंगे. गणेश जी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे. तो गणेश जी के बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ स्थितियों को स्मरण करते हैं. शिव जी का प्रणाम मंत्र याद है? आपको तो हरे कृष्ण वाले तो शिव जी के अच्छे भक्त होते हैं। गणेश जी और शिव जी के अच्छे भक्त मतलब हरे कृष्ण ही वाले होते हैं, उनको सही रूप से समझने वाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं वदामि सहितं नमामि। अभी शिव जी का हो गया। अभी गणेश जी का कहते गजाननं भूत गडादि सेवितं कपेत जांबो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहं यं समर्पते भक्ता तत्त्वविघ्नो न जायते तस्मै ददाति संतुष्टा सर्वान् कामा विनायकम्। तो आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी जो एक्चुअली हर एक जीवात्मा हर एक जीव के जीवन में गणेश जी का जो स्थान है ना बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। और विशेष करके हम जो भक्त हैं और हम भक्तों के बीच में तो गणेश जी का बहुत ही उत्तम स्थान है। तो मैं पिछले कुछ 4-5 दिनों से मैं इस पे जन्माष्टमी के पश्चात पहले तो जन्माष्टमी से पहले विचार किया था कि गणेश जी के ऊपर कुछ हम तैयारी करूंगा, तो उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन जन्माष्टमी की सेवा इत्यादि से हो नहीं पाया था। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत सारा शिव महापुराण और बहुत सारे श्लोकों को और कुछ प्रवचनों को मैंने कई कंटिन्यू 2-3 दिन से सुन रहा था। तो एक्चुअली मैं अपने आप को सौभाग्यशाली आज इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे चीजें ना पिछले 3 दिनों के अंदर पता चला जो कि गणेश जी के विषय में, क्योंकि मैंने पढ़ा, क्योंकि बोलना था। जब हमको बोलना रहता है ना, आपको 1 घंटा प्रवचन देना है ना, तो आपको कम से कम 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। 5 घंटा पढ़ेंगे तब जाके 1 घंटा का प्रिपरेशन होता है। तो मैंने बहुत सारे चीजें, क्योंकि हम पढ़ते बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन जब भी बोलना होता है ना तो कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। तो मैंने 3 दिनों से मैंने काफी श्रवण भी किया गणेश जी के विषय में, और कुछ पढ़ा कुछ जगहों पे, कुछ श्लोकों को एक किया, और कुछ भक्तों से भी फोन करके बात करके मैंने इंक्वायरी किया। तभी मुझे पता चला कि हम वैष्णव के जीवन में गणेश जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ना, हमारे जीवन में हम किस प्रकार से उनका ये वर्णन करेंगे आगे हम। तो इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ क्योंकि आज के दिन पे विशेष करके गणेश जी के इस चतुर्थी दिवस पे हम उनके बारे में बोलने का कुछ प्रयास करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि पूरे भारत में एक गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है ना, गणेश जी का उत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और विशेष करके महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा है, गुजरात में भी करते हैं, अन्य जगह पर धीरे धीरे अभी सब जगह चालू हो गया, लेकिन विशेषतः जो जहाँ पे ये उत्सव को बहुत ही बड़े धूमधाम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो वह है महाराष्ट्र और गुजरात में। तो वास्तव में अगर हम गणेश जी का जो कृपा पाना चाहते हैं तो वो कौन है उनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम गणेश जी का दर्शन, हम वैसे तो दर्शन गणेश जी का बहुत करते रहते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, फोटो भी यहाँ पे भी आते हैं तो गणेश जी का सुंदर दर्शन है अलग अलग जगह जहाँ पे सब जगह। अभी ऐसे भी ये समय है तो सोसाइटी में जहाँ पे जिधर भी जाए नजर घुमा उधर गणेश जी दिखते हैं, है ना, रोड पे सब जाते समय आते समय सब गणेश ही गणेश दिखते हैं ऐसा। तो हमने दर्शन तो बहुत किया है, अपने आंखों से दर्शन गणेश जी का बहुत किया है, लेकिन आज हम अपने कानों से दर्शन करेंगे गणेश जी का। क्योंकि एक्चुअली हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कानों से दर्शन करना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार मंदिर में बैठ के प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उस समय मंदिर बंद था, तो प्रवचन देते देते मंदिर खुला, होता है ना, भोग लगा रहता है और प्रवचन चलता रहता है ना, तो फिर मंदिर खुलता है इसी बीच में। तो जब ये दर्शन खुला तो इसमें से एक भक्त उठ के दर्शन करने चला गया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला कि वो अपने आंखों का एक्सरसाइज करने गया हुआ है, क्योंकि वास्तविक जो दर्शन है ना हमको सुनने से प्राप्त होता है ना। जब तक हम सुनेंगे नहीं, आप विचार करिए, जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति कैसे प्रेम हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति में सबसे पहला जो वर्णन आता है क्या कहते हैं, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो श्रवण है ये भक्ति का प्रथम बताया गया है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली में दर्शन करने के लिए ना हम इन चर्म चक्षुओं से अपने दर्शन कर ही नहीं सकते, भौतिक नेत्रों से दर्शन तो कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमांजनक चुरित भक्ति विलोचने ना, जब तक प्रेम के अंजन आंखों में नहीं लगेंगे ना तब तक हम दर्शन तो कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे दर्शन। और एक प्रेम के अंजन ना केवल श्रवण करने से ही लगता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो सुन के जो दर्शन करेंगे गणेश जी का, एक्चुअली में वो रियल दर्शन है ना, वो रियल दर्शन है। तो ब्रह्म संहिता, जो कि जानते हैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के गुणों के विषय में या भगवान कृष्ण की महानता के विषय में उनकी स्तुतियां करते हुए ब्रह्म संहिता उन्होंने ब्रह्मा जी ने लिखा। और ये ब्रह्म संहिता हम तक किसने पहुंचाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहुंचाया हम तक। चैतन्य महाप्रभु, आप सब लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के पश्चात जब वो यात्रा करने पर निकले, यात्रा भ्रमण कर रहे थे, तो जब वो साउथ में पहुंचे वहां पे आदि केशव मंदिर में पहुंचे। वो जब आदि केशव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, वहां पे जाते ही उन्होंने भगवान आदि केशव का दर्शन किया और प्रणाम करने के पश्चात वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने, और अपने अन्य सारे भक्तों के साथ बहुत उदंड कीर्तन हुआ वहां पे आदि केशव मंदिर में। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के पश्चात हमको सिखाया कि किस प्रकार से कृष्ण के विरह में रोना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन किस प्रकार से करना, ये सारी चीजें सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, आचरण किया। हालांकि वो स्वयं भगवान थे लेकिन फिर भी वह आचरण करके सिखाए हमको किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे आदि केशव मंदिर में बहुत कीर्तन किए और कीर्तन करने के पश्चात उन्होंने देखा कि वहां के कुछ ब्राह्मण लोग वो ब्रह्म संहिता के 5वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो हमारे बीच में जो अभी ब्रह्म संहिता उपलब्ध है वो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा है ना, वो ब्राह्मण लोग जो ब्रह्म संहिता के पाठ कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने हम सारे लोगों को ये ब्रह्म संहिता प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम ये जो ब्रह्म संहिता है हमको प्रदान हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म संहिता का वर्णन किया। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जानते हैं इस सृष्टि के सबसे प्रथम जीव कौन है, ब्रह्मा जी है ना, सृष्टि हुआ तो सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और जब ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के जब हृदय में ज्ञान का उदय हुआ भगवान की कृपा से, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता ये रचना किया उनके गुणानुवाद करते हुए। तो उस ब्रह्म संहिता के एक श्लोक में ब्रह्मा जी गणेश जी के बारे में वर्णन करते हैं, तो हम उस श्लोक को लेंगे और उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो कृपया मेरे बात दोहराए, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, जोर से, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य जगत्त्रयस्य विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस श्लोक में गणेश जी के बारे में वर्णन। रूपा जी बहुत सुंदर तात्पर्य भी लिखे हैं गणेश जी के विषय में। मैं एक्चुअली जब पढ़ रहा था तो मैं एक चीज में फंस गया था एक्चुअली कि गणेश जी इस समय के गणेश जी है कौन, इसमें फंस गया था। क्योंकि गणेश जी ना स्वयं कृष्ण भी गणेश बन के आते हैं। जब मैं पढ़ा तो कब आते बनके, तो इस बार के गणेश जी कौन है वो मुझे जानना था कि इस बार के गणेश जी स्वयं कृष्ण है या फिर कृष्ण का शक्ति। दो गणेश जी दो ही बनते हैं, या तो कृष्ण स्वयं बनते हैं और या तो एक शक्ति विशेष, एक शक्ति किसी जीव को प्रदान करते हैं और उसको बनाते हैं। दो ही, हम आगे इसका वर्णन करेंगे। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक में कहते हैं गोविंद महादि पुरुषम, मैं उस गोविंद उस पुरुष का भजन करता हूं जो कि किसके द्वारा पूजित है, गणाधिराज गणेश जी के द्वारा। हम इसका एक्सप्लेन धीरे धीरे आगे करेंगे। तो जीव गोसाई पाद श्लोक के में वर्णन करते हुए कहते हैं, श्लोक के टीका लिखते हैं जीव गोसाई पाद, वर्णन कहते हैं कि संसार में अगर सर्वप्रथम अगर किसी की पूजा होना चाहिए तो गणेश जी। ये जीव गोस्वामी पाद हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद ने बहुत सारा टिकाएं लिखी, बहुत सारे श्लोकों, लगभग 5 लाख श्लोकों की रचना जीव गोस्वामी पाद किए हुए हैं। अभी आने वाला उनका जिसे प्रथम चर्चा करेंगे उनके विषय में। तो जीव गोस्वामी पाद श्लोक के ऊपर टीका लिखते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि इस संसार में सब स्वर्प जब अगर पूजनीय कोई है तो गणेश जी है, उनकी पूजा करना चाहिए। आदि पूज्यम गणनायकम, आदि पूज्यम गणनायकम। क्यों, एक बार की घटना है, पुराणों में एक कथा मिलती है कि सारे देवता लोग एक कंफ्यूजन में फंस गए, बहुत कंफ्यूजन में फंस गए कि अगर संसार में पहले अगर पूजा होनी चाहिए तो किसकी पूजा होना चाहिए। ये कंफ्यूजन देवताओं के अंदर एकदम कंफ्यूज हो गया, चर्चा करना किसकी होना चाहिए किसकी होना चाहिए, और अंतर तो कोई रिजल्ट नहीं मिला उनको। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए सब लोग मिलके और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि प्रभु इस संसार में सबसे पहले किसका पूजा होना चाहिए, किसको पूजा करना चाहिए सबसे पहले। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि एक काम करो, देवताओं को एक सलाह दिए कि सारे लोग आप जाके इस पूरे ब्रह्मांड का जो भ्रमण करके जो पहले आ जाएगा ना उसकी पूजा पहले होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्शन, ये आदेश दिया, और जैसे ही आदेश मिला है ना तो तुरंत ही सारे देवी देवता निकल पड़े। अब जानते हैं कि सारे देवी देवताओं के अलग, सबका अलग अलग वाहन है ना, उसमें सबसे अगर स्लो किसी का वाहन है तो कौन किसका है, गणेश जी का है। तो ब्रह्मा जी के आदेशानुसार जैसे ही है ना आदेश मिला और तुरंत भागे सब है ना, अपने अपने वाहन को लेकर तुरंत पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके वहां आए ताकि आएंगे तो उनकी पहली पूजा होगी। तो जब गणेश जी के जानते हैं कि उनका शरीर भी भारी है ना, और उनका जो वाहन है वह कौन है, मूषक चूहा। तो गणेश जी ने देखा कि मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, मैं तो भ्रमण करके आ नहीं पाऊंगा। और गणेश जी ने एक्चुअली बहुत इसका वर्णन मैं करूंगा, कितने बुद्धिमान है गणेश जी और कितने महान है, उनकी महानता के विषय में भी आगे मैं बताऊंगा। तो इतने बुद्धिमान है गणेश जी, ये जितने भी शास्त्र और लिपि जो दिख रहे हैं ना ये सब गणेश जी ने लिखा है, और केवल लिखा नहीं है, इसको समझ के लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा आगे। तो उस समय गणेश जी ने तुरंत क्या किया, भगवान राम को एक पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखा और उसका 7 बार परिक्रमा करके वापस ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। मैंने ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा कर लिया, आपने 1 बार बोला मैंने 7 बार किया और 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने सबसे पहले पहुंच गए गणेश जी। और ब्रह्मा जी ने इस कार्य को देखते हुए और बोले कि अगर संसार में सबसे पहला कोई पूजनीय व्यक्ति है तो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही जानते हो सही सत्य क्या है, तुमको मालूम है, इसलिए तुम्हारा पूजा पहले होना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने बोला। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं आदि पूज्यम गणनायकम, जो प्रथम जो पूजा होनी चाहिए वो गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। तो सभी इसलिए हम देखते हैं कि संसार में भले से लोग अभी क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं है लेकिन देखते हैं और करते हैं, ऐसा एक दूसरे को देखते हैं करते हैं, वो गाते भी है भजन भी गाते हैं लेकिन उसका अर्थ पता नहीं होता है ना, वो तोते की तरह कुछ भी सिखा दिया गया तो बोलते रहेंगे। तो सब लोग करते हैं एक्चुअली। देखिए गृह प्रवेश है गणेश जी का, और उसके बाद शादी विवाह है गणेश जी का। सर्वप्रथम आप कहीं पे भी देखिए कोई भी कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है, ये शास्त्र संबंध देता है। जीव गोस्वामी पाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं आदि पूज्यम गणनायकम। इसलिए संसार में सबसे पहले अगर किसी की पूजा होती है ना वो गणपति की होती है। जब मेरा रूम रेडी हुआ था तो उस समय मैंने एक कंफ्यूजन में था, क्योंकि हरे कृष्णा वाले कुछ कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं इस बात को लेके, नरसिम्हा देव की पूजे या गणेश जी को पूजे क्या रखे। तो मेरे मन में भी ये दुविधा फंसा कि क्या करना चाहिए, अपना द्वार पे किसको रखना चाहिए, गणेश जी को रखना चाहिए कि नरसिम्हा देव को रखना चाहिए। तो बोला कि अभी अपना बुद्धि क्या चलाए, इतने सारे महात्मा अवेलेबल है तो पूछ लेना चाहिए। तो मैंने कमलोचन को फोन किया कि ऐसा ऐसा है अभी मुझे द्वार पे विघ्न को हरता करने वाले उनको रखना है, क्या करूं, नरसिम्हादेव को रखो गणेश जी को। तो कमलोचन को बोला गणेश जी को रखो, और फिर मैंने सास ससुर को उसे भी पूछा क्या करना चाहिए, बोले नहीं गणेश जी को रखना चाहिए। तो क्योंकि भले से गणेश जी के जो इष्ट देवता है कौन है, नरसिम्हादेव, हालांकि सारी शक्ति वो विघ्न नाश करने का वो लाते हैं कहां से, नरसिम्हादेव से लाते हैं, लेकिन फिर भी हमको गणेश जी को ही रखना है। क्यों रखना है पता है, भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर सच में वास्तविक में तुमको मेरी कृपा चाहिए मेरा प्रेम चाहिए तो तुम मेरे भक्त की सेवा करो, भक्त के माध्यम से आओ, डायरेक्ट कोई पहुंच नहीं पाएगा भगवान तक, भक्त के माध्यम से ही आना पड़ेगा। जब भक्त किसी भक्त के जब कोई भक्त हमारे लिए जब प्रार्थना करता है ना तो निश्चित रूप से भगवान सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो गणेश जी है आदि पूज्यम गणनायकम, आदि प्रथम पूजनीय है ना। तो गणेश जी जो कि नित्य है ना, आदि नित्यम, आदि अनादि काल से गणेश जी है, ऐसा नहीं कि वो शिव जी के पुत्र पार्वती के पुत्र है ना, पार्वती और शिव जी लीला के दृष्टिकोण से शिव और पार्वती के पुत्र तो है ही, लेकिन तत्व की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आदि अनादि काल से है। जैसे कि भगवान कृष्ण लीला के दृष्टिकोण से देखें तो किसके पुत्र है, देवकी और वसुदेव के पुत्र है, लेकिन क्या देवकी और वसुदेव के केवल पुत्र है, नहीं, वो आदि अनादि काल से भगवान है भगवान कृष्ण, लेकिन लीला के लीला को करने के लिए वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के घर पे प्रकट हुए। इसी प्रकार से जो गणेश जी है ना ये नित्य है अनादि काल से है, वो लीला करने के लिए वो शिव जी और पार्वती के इधर प्रकट होते हैं। एक आचार्य तो कहते हैं कि ये अनादि काल से, बहुत अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारे इस पर टिप्पणी भी दिया हुआ है, तो कुछ रसिक आचार्य है तो उस प्रकार से कहते हो कहते हुए कहते हैं कि अनादि काल से है। एक बार एक स्टोरी डालते हैं कि एक बार की घटना है कि गणेश जी वो अपने माता पिता मतलब शिव और पार्वती के शादी का एल्बम देख रहे थे, है ना, शादी का एल्बम देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहले जब वो एल्बम खोला उन्होंने तो उसमें सबसे पहले गणेश का चित्र था, उनका खुद का फोटो था। गणेश जी बहुत खुश हो गए, पहला ऐसा कोई मैरिज का फोटो होगा जहां पे तो गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो आचार्य लोग लिखते हैं कि संसार में अगर कोई पूजनीय है सबसे पहले तो गणेश जी है, अनादिकाल से वो नित्य है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि गणेश जी अनादिकाल से नित्य रूप से रहते हैं। जब हम गणेश जब नाम सुनते हैं ना, जैसे गणेश सुना अभी गणेश, तो हमको ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, एक गणेश जो है ना पोस्ट है, एक पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है ना, उस पर कोई भी आता है, तो ऐसे गणेश जी एक पोस्ट है और वो पोस्ट पे कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन कभी भी कोई ये कोई और डिसाइड नहीं करता कौन आएगा, ये स्वयं भगवान डिसाइड करते हैं। गणेश जी को लेकर स्वयं भगवान जी डिसाइड करते हैं कि कब आएगा। तो किसी भगवान क्या करते हैं, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को उसको अपना शक्ति देते हैं जिससे वो गणेश बनता है। भगवान देखते हैं ऐसा कोई विशिष्ट जीव नहीं है, तो ऐसे कई बार हुआ जबकि भगवान स्वयं गणेश के रूप में आए उस पोस्ट को दाए, क्योंकि वो पोस्ट जो है ना वो कोई साधारण पोस्ट नहीं है। वहां पे सोचिए पूरे संसार को विघ्न को नाश करना, मतलब कोई साधारण जगह है, साधारण जगह नहीं है। इसलिए स्वयं उस जगह पे भगवान कितनी बार गणेश के रूप में आए हुए। तो मैं ये जब इस दुविधा में जब पढ़ा था, जब ये प्रसंग मैं सब सुना ना, तो बहुत होगा कि मतलब गणेश भगवान गणेश के रूप में है, मतलब इसलिए हमको जब पूजा करना चाहिए ना, गणेश जी का भी भगवान के रूप में पूजा कर सकते हैं, है ना, करना चाहिए। अभी तो कर सकते का सवाल बहुत सारे चीजें था, वो तो क्लियर हो गया मेरा, इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान स्वयं गणेश के रूप में आते हैं उस जगह को संभालने के लिए। वो जगह कोई और ले ही नहीं सकता है, इसलिए या तो अपने शक्ति विशिष्ट को भेजते हैं और नहीं तो स्वयं आते हैं। तो इस प्रकार से जो गणेश भगवान क्या करते हैं कि भगवान की जो सृष्टि है, सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे कि ब्रह्मा जो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जो पहले जीव है वो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सारे जीवों को वो शरीर प्रदान करते हैं जितने भी है, मतलब हमारी भी सृष्टि जो है कौन किया, ब्रह्मा जी ने किया। तो भगवान अपने सृष्टि को चलाने के लिए ना, सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग देवताओं को रखे हुए, जैसे कि बारिश है ना, एक एक देवता बारिश प्रदान करना है, बारिश देना है, बारिश जो बारिश की देवता कौन है, इंद्रदेव है ना, उनके अधिष्ठाता देव इंद्रदेव है। तो बारिश जो है इंद्र का काम है देना, है ना, उसकी सेवा है। भगवान ने ऐसे सब जगह पे, जैसे समुद्र, समुद्र के अधिपति देवता कौन है, वरुण देव जी है। सोचिए कि इतने सालों से समुद्र बह रहा है ना, तट पे जाइए वो तट छोड़कर ऊपर तक नहीं आता है, हाँ, ऐसा तट पे खड़े होते तो ऐसा लगता है कि अभी बह जाएंगे हम, अभी पूरा डुबा डालेगा पूरा सिटी को, इतने सालों से बह रहा है लेकिन तट को छोड़कर ऊपर नहीं आता समुद्र, क्यों, क्योंकि इसके अधिष्ठाता देव जो कि उनके कंट्रोलर है, कंट्रोल करते हैं। और ऐसे ही हवा, पवन देव, हवा को कौन कहते हैं, पवन देव है ना। और वैसे ही विघ्न को दूर करने के लिए, सारे विघ्नों को दूर करने के लिए स्वयं भगवान कभी कभी इस पोस्ट को धारण करते हैं, आते हैं, गणेश जी बन के आते हैं ना, गणेश इस पोस्ट को संभालते भगवान स्वयं। तो जब योग्य जीव नहीं मिलता है जिसके अंदर उस शक्ति को भगवान दे, तो ऐसे परिस्थिति में भगवान स्वयं इस पोस्ट को, गणेश के पोस्ट को स्वयं भगवान धारण करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी, मैं ये पढ़ रहा था तो कई जगह पे श्रीमद् भागवतम में गणेश जी के बारे में कहां कहां वर्णन है, बहुत सर्च मारा, बहुत ढूंढा, तो श्रीमद् भागवतम में मैंने एक ऐसे कई जगह पे मैंने देखा, कई जगह पे है, लेकिन एक मुझे पास टाइम एक स्टोरी के रूप में मैं प्रस्तुत करते हुए बताऊंगा कि किस प्रकार से भागवतम में गणेश जी का जो महत्व है कितना रखा गया है वहां पे। तो श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं कि एक बार की घटना है, और ये जो घटना बता रहा हूँ ये लीला, समुद्र मंथन लीला से रिलेटेड है ना। तो इंद्र द्वारा दुर्वासा का अपराध, दुर्वासा मुनि का अपराध, इंद्र ने दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध किया। कैसे, एक बार की घटना है कि दुर्वासा मुनि भगवान से मिलके वैकुंठ से वो आ रहे थे, और इंद्र भी अपने वाहन, कौन है इंद्र का वाहन, ऐरावत, हाथी के ऊपर बैठ के इंद्र भी जा रहा था, और जैसे ही वहां से सामने से दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, भगवान से मिलकर आ रहे हैं, और इधर से इंद्र इंद्रदेव अपने वाहन पे बैठकर जा रहे थे, और जब ही देखे कि दुर्वासा मुनि सामने दिखे तो इंद्र ने क्या किया, हाथी के ऊपर बैठे बैठे दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि ने देखिए, इंद्र ने यहाँ पे बड़ा अपराध किया एक्चुअली मुनि के चरणों में, क्योंकि दुर्वासा मुनि बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, ऋषि हैं, इसलिए उनको चाहिए कि अपने वाहन से उतरकर, सोचिए वाहन से उतरकर उनको प्रणाम करना दुर्वासा मुनि को। लेकिन आचार्यगण उस पे बहुत टीका लिखते हुए कहते हैं कि ये जो इंद्र है ना, जब भी व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा और धन जब प्राप्त हो जाता है ना, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है ना। इसलिए ये जो धन और प्रतिष्ठा पद जो है ना, अगर इसको सही रूप से अगर नहीं जाना जाए तो निश्चित रूप से हमारे पतन का कारण बनता है। ये 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 सारे चीजें रहना गलत बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन अगर उसको दुरुपयोग कर लिया जाए, उससे आसक्त हो जाए, तो उससे आसक्ति अगर हो गया तो ये हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य सुते सिभिर एद मान पुनः पुमान, कि ये जो धन और ऐश्वर्य है, ये हर एक व्यक्ति को भगवान आपके चरण कमलों से दूर ले जाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति इससे आसक्त हो जाता है ना, तो दूर दूर चला जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अपने वाहन से, अपने ऐरावत से, अपने गाड़ी से उतरा नहीं इंद्र, उतरे नहीं, और वहीं से प्रणाम किए ऐसा। कभी कभी हम देखते हैं मंदिर के सामने से लोग जाते गाड़ी लेके, ऐसा ऐसा करते हुए जाते हैं, ये एक्चुअली ठीक नहीं है एक्चुअली। कभी कभी किसी का ज्यादा प्रेम है तो थोड़ा गाड़ी रोक देता है, रोक के फिर ऐसा ऐसा करके फिर आगे चला जाता है। हम देखते हैं उधर मंदिर के सामने, ऐसे बहुत जगह पे इस प्रकार करते हैं। देखिए अगर वास्तव में आपको प्रणाम करना है ना, कहीं भी जा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है मंदिर दिख रहा है, अगर प्रणाम करना है तो थोड़ा दो मिनट रुक जाइए, अगर करना है तो दो मिनट रुक के प्रणाम करके निकल जाइए, कोई कोई उसमें हानि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग को जब मैं देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि इनका अधोगति होगा एक्चुअली, ऐसा करना नहीं चाहिए। हम पहली बात है कि मंदिर के गेट पे हमको भगवान के सामने, भगवान के मंदिर के अगर गेट है, मंदिर का गेट के सामने ना, हमको कभी भी उनके सामने गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। भगवान के सामने गाड़ी से तो उतरना ही नहीं चाहिए, गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क करना चाहिए जहां पे, ऐसा नहीं कभी कभी क्या होता है मंदिर दिखता है रोड से ही दिखता है ना, गाड़ी साथ में पार्क करते हैं फिर उतर के जाते हैं, वो ठीक नहीं है एक्चुअली। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्जित बताया गया है ना, कभी भी भगवान के सामने ना हमको गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहिए, कहीं और गाड़ी खड़ा उतर के पैदल भगवान के सामने जाना चाहिए। तो फिर भी कोई ठीक है, और उनकी श्रद्धा इस प्रकार से है, भगवान तो कभी भी किसी का हानि नहीं पहुंचाते हैं, है ना। लेकिन वह कैसा आदान प्रदान भी वैसा ही रहेगा ना। एक 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 घटना मैं पढ़ रहा था, पुराण पुराण में ऐसी घटना है, एक घटना पढ़ रहा था कि मान लीजिए वो व्यक्ति वो केवल इसी प्रकार से आदान प्रदान किया है भगवान के सामने, तो भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान करेंगे, है ना। मान लो नरक में चला गया तो भगवान भी ऐसा ही ऐसा करेंगे, बस दूर थे क्योंकि भगवान एक प्रमाण है, भगवान गीता में प्रमाण है, हा? क्या प्रमाण देते हैं गीता में भगवान, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थिति भजा में, हम जो जिस प्रकार से मेरे साथ आदान प्रदान करता है मैं भी उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ, है ना। कभी कभी ये बड़ा प्रश्न होता है कि भगवान जो है भक्तों के लिए पालन करता है और असुरों के लिए संहार करते हैं, केवल नहीं असुरों को संहार नहीं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, और भगवान कभी किसी से द्वेष करते ही नहीं। सातवें स्कंद में इस बात को लेकर बहुत सारे चर्चाएं हैं कि भगवान द्वेष करते हैं, भगवान द्वेष नहीं कर सके किसी से, वो सब उनके नजर में हर एक जीव समान रूप से है। लेकिन ए यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्तुतये भजामि, हम जो जिस प्रकार से उनकी भक्ति करेगा भगवान उसी प्रकार से, भगवान को अगर हम प्रेम कर रहे हैं, उनको डेली नहला रहे हैं, डेली कपड़ा पहना रहे हैं, डेली भोग बना रहे हैं, खिला रहे हैं उनको, तो भगवान भी क्या करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो इसलिए कभी भी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्रदेव जी जो है वह बैठे बैठे प्रणाम किए ऋषि को, और किसको प्रणाम किए बैठे बैठे, सोचिए दुर्वासा ऋषि को, जिनका कि श्राप देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो प्रणाम किए, लेकिन फिर भी वो ऋषि मुनि बिल्कुल उनको दुख नहीं लगा, बोले ठीक है, उन्होंने अवॉइड किया, बोला कोई बात नहीं है चलो वहां से बैठे बैठे तो प्रणाम किया। तो इसलिए ऋषि ने प्रेमवश उन्होंने क्या किया, वैकुंठ से आ रहे थे और भगवान जी का जो माला था वैजयंती माला था वो उनको मिला हुआ था प्रसाद के रूप में, और तुरंत ही दुर्वासा मुनि ने क्या किया प्रेमवश वो केक्स को दे दिया, इंद्र को दे दिया, उनके गले में डाल दिया, है ना। लेकिन वही अभिमान अहंकार है ना उस वस्त, और उस भगवान के द्वारा मिला हुआ प्रसाद अभी तो महा 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 प्रसाद हो गया है ना, भक्त ने धारण किया और उसके बाद फिर से मिला हमको महा महा प्रसाद हो गया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, जैसे ही उनके गले में डाल दिया और जैसे ही गले में आया और इंद्र ने उठा के निकाला, नेताओं के जैसा अभी आजकल के नेता देखते ना गले में हाथ पड़ा नहीं कि उतर, अभी हाथ पड़ता है तो उनके बाजू में एक असिस्टेंट खड़ा रहता है, उसको मालूम है कि हाथ उतरेगा तो इधर मिलेगा उसके हाथ में देने के लिए, है ना, तुरंत निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया, प्रसाद था तुरंत निकाला, और निकाला तो निकाला कहाँ रखा, अभी हाथी के ऊपर बैठा है ना तो हाथी के सर के ऊपर रख दिया, ठीक है। कभी कभी हमको भी ऐसा होता है, कभी मंदिर से फूल लेकर आते हैं और गाड़ी में चढ़ा देते हैं, गाड़ी के मुंडी में पहना देते हैं इंद्र की तरह अपने गले में, वो नैवेद्य है, नैवेद्य महाप्रसाद है भगवान का, उसको जहां जितना हो सके उतना पास में रखना चाहिए जब तक हो सके, जैसे गार्लैंड भी मिला तो जब तक हो सके उसको, हाँ जब तक वो खराब नहीं हो जाता है तब तक उसको रखना चाहिए पास में, फेंकना नहीं चाहिए, अगर प्रसादी के रूप में लेकर आए तो, है ना, नहीं उसको विसर्जन करना चाहिए, उसको रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, अपराध होता है। तो इंद्र ने क्या किया, वो तुरंत ही वो निकाल कर उस हाथी के ऊपर रख दिया, और हाथी हाथी का स्वभाव ही जानते हैं, तुरंत ही उसने अपने मस्तक से सूंड से मस्तक से उतारा और नीचे गिराकर पैर से कुचल दिया। अभी तो दुर्वासा मुनि का एकदम क्रोध तो एकदम बढ़ गया, चलो ठीक है मेरा अवमानना किया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन अभी भगवान की प्रसाद को गार्लैंड को इसने इतना बड़ा, अब तो बिल्कुल सहन, ऑलरेडी वैसे उनके अंदर क्रोध इतना बढ़ा हुआ है, अभी तो बिल्कुल तुरंत ही उन्होंने श्राप दे डाला, तुरंत ही श्राप डाला कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, और ऐसा श्राप तुरंत उसका पतन हो गया, इंद्र का क्या पतन हुआ तुरंत ही, क्योंकि असुर लोग जो है ना हमेशा वेट करते हैं, जैसे ही इंद्र की शक्ति छीड़ हुआ ना किसी भी एंगल से छीड़ हुआ तुरंत अटैक करते हैं असुर लोग, तुरंत ही अटैक करते हैं, तुरंत कितनी बार हुआ ऐसा जो असुरों ने चढ़ाई किया और भगवान ने फिर से इंद्र को वापस उस सिंहासन पर स्थापित किया, तो तुरंत ही उनका पतन हुआ, दुर्वासा मुनि के हिसाब से तुरंत ही असुरों का चढ़ाई हो गया और तुरंत ही पूरा स्वर्ग लोक पे सारे असुर लोग कब्जा कर लिए और इंद्र रोड पे आ गया, है ना, अभी तक करोड़पति था अभी तक रोड़पति, देखिए क्या केवल एक अपराध करने मात्र। इसलिए कभी भी धन ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा का कभी भी अभिमान होना ही नहीं चाहिए, ये अभिमान हुआ तो उस दिन से पतन शुरू हो जाता है, एक्चुअली में उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी हमको भगवान की कृपा है अभी तक हमको दिया है, हमको उनकी सेवा में लगाना है और हमने कोई इस प्रकार से रखा हो, उनकी कृपा मान के हमेशा चलना चाहिए, है ना। जैसे ही हमको हमारा अहंकार बढ़ा ना, आप देखिए भौतिक जगत में भी आप रहते हैं, अगर देखिए हमारा जो अहंकार है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना वो कभी भी शांति से नहीं जीता है, हमेशा ऑफिस में झगड़ा करेगा, ये करेगा, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, बोलता रहेगा और हमेशा उसको दुख तकलीफ मिलता रहता है ना, तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इंद्र ने अपराध किया और अपराध के कारण वो स्वर्ग लोग उसका चला गया, स्वर्ग लोग चला गया, उसका पतन हो गया। लेकिन जब पतन हुआ तो फिर सब सारे देवता मिलके, अभी इंद्र का गद्दी गया मतलब सब लोग बेघर हो गए ना, अभी उनके आश्रित जितने भी लगे तो सब बेघर हो गए, सबको भगा दिया असुरों ने, और वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने फिर उनको लेके भगवान के पास गए, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि इंद्र जो है पूरे भागवतम में देखेंगे इंद्र ने कितनी बार गलती किया, बहुत बार गलती किया, हाँ ब्रजवासियों को इतना तकलीफ दिया, है ना, और अन्य बहुत सारे लीलाओं का पढ़ रहे हैं कितना तकलीफ देता है, इतनी बार अपराध करता है, फिर भी प्रश्न ये उठता है कि भगवान फिर भी उनको क्यों बचाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा आचार्य लोग लिखते हैं कि इंद्र बार बार गलती करता है लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो भगवान स्वयं भगवान करके भागवतम का कौन सा श्लोक प्रदर्शित करता है, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, और क्या करते हैं, इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जो इंद्र इतना गलती करता है फिर भी भगवान उसकी रक्षा बार बार करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इंद्र के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण है, ये सीखने वाली बात है। आचार्य लोग बताते हैं सीखने वाली बात है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण क्या है पता है? वो गलती करता है तो गलती को स्वीकार करता है, इसलिए भगवान उसको बार बार रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में देखिए, हम गलती करते हैं तो हम तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, है ना? स्वीकार जबरदस्ती स्वीकार किया जाता तो भी नहीं करते हैं। तो हमको अपनी गलती को हम हमेशा स्वीकार करना चाहिए, अगर हम गलत है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और देखिए, यही गुण होने के कारण इंद्र को बार बार भगवान बचाते हैं। हम बोल सकते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हमको रक्षा नहीं कर रहे हैं, इतना तकलीफ आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो शायद इस प्रकार से इस प्रकार की भावना हो हमारी, इसलिए भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लेना, भगवान के सामने जाके बता देना कि मैंने ये गलत काम किया हूं, उसको स्वीकार कर लेना। शरणागत होना किसका? अभी चलो बोलेंगे, हम बोलेंगे कि गलती किया तो जाके मैं भगवान को बता दूंगा, है ना? नहीं, इंद्र किसके पास गया? ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार किया, वहां पे जाके बोला मैं गलत हूं, पूरा संसार जाना, है ना? कभी कभी हमको लगता नहीं, कृष्ण को मैं बता दिया, हो गया, ऐसा नहीं, भक्तों को बताइए ये गलती, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास भक्तों के माध्यम से ही पहुंचता है, गुरु के माध्यम से ही पहुंचता है। तो ये गुण सबसे बड़ा गुण इंद्र के अंदर है, है ना? क्योंकि वो गलती को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से इंद्र जो ब्रह्मा जी को लेके सारे देवताओं को भगवान के पास गए, और भगवान ने फिर क्या बोला कि जाओ अभी तुम असुरों से मित्रता कर लो, उनको फ्रेंड बना लो। अभी इंद्र तो सोचने लगा ये कैसे पॉसिबल है, अरे आपकी बात कभी समझ में आती ही नहीं। आप कभी कभी ये बोलते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, अभी आप बोल रहे हो असुरों के साथ जाके मैं मित्रता करूं, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कहना क्या चाहते आप। तो इंद्र इस प्रकार का जब बोलने लगा तो भगवान वहां पे थोड़ा डांटते हुए बोलते, गधा, भगवान बोल सकते हैं गधा तो उन्होंने एक भागवतम में भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक श्लोक में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि असुरों से क्यों मित्रता रखना, क्योंकि अभी भगवान यह चाहते हैं कि अगर तुमको अपने पद को वापस प्राप्त करना है तो तुमको अमृत का पान करना पड़ेगा, अमृत पिएगा तभी शक्ति आएगा, है ना? अमृत पिएगा तो शक्ति आएगा, तो अमृत निकलेगा कैसे? अभी समुद्र से अमृत निकालना है तो कोई साधारण कोई, अभी तो तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है, इसलिए तुमको असुरों को मित्र बनाना ही पड़ेगा। असुरों को मित्रता करो, मित्रता करके सब लोग साथ में मिलकर समुद्र मंथन करो। तो और इस बात को बताते हुए भगवान एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं? सर्प और चूहे का एग्जाम्पल। किसी को पता है सर्प और चूहे का एग्जाम्पल? नहीं पता है सर्प और चूहे का, कि एक व्यक्ति ने सर्प को पकड़ा, है ना? सर्प को पकड़ के उसको बास्केट में बंद कर दिया, है ना? बास्केट में बंद किया, और बंद करने के पश्चात अभी उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, है तो कुछ देर के बाद वो सर्प का जो आहार है चूहा, वो लेकर आया, वो बास्केट खोला और उसमें डाल दिया, चलो खा लेगा तो जीवित रहेगा नहीं तो मर जाएगा ना, खाने के लिए तो चाहिए। तो अभी चूहे को डाल दिया अंदर, और जैसे ही चूहा अंदर गया देखा कि सर्प, तब तो उसके प्राण एकदम निकल गए, अभी तो खाना तो छोड़ो उसके प्राण ही चले गए, देखा कि अभी सोचे एक निकल जाने वाला सामने खड़ा है, और वो टेंशन में हो गया। तो देख जैसे ही टेंशन में देखते हैं सर्प ने बोलना शुरू किया, सर्प ने क्या बोला? अरे आप चिंता मत करिए, आज फ्रेंडशिप डे है मैं आपसे दोस्ती करूंगा, है ना? मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आपसे दोस्ती करूंगा, चिंता मत करिए। बुद्धि का इस्तेमाल किया, भगवान यही बताना चाह रहे इंद्र को, बुद्धि का इस्तेमाल करो, किसका? असुरों का, शेष का मित्रता करो। अभी सर्प को मालूम था इस बास्केट में से निकलना है तो उसके बदले बात नहीं है, लेकिन ये जो चूहा है ना ये बहुत आसानी से निकाल सकता है, इसलिए उस चूहे के साथ सर्प ने मित्रता कर ली। चूहे को विश्वास नहीं हुआ, उसको नींद ही नहीं, उसको शांति नहीं था, विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है कि ये हमको ना खाए, करके विश्वास नहीं हुआ। और ऐसे करके समय बीतते बीतते रात्रि हुआ, दोनों सो गए, दोनों से गए सुबह जब नींद खुला चूहे का तो सर उसको लगा कि नहीं वास्तव में इसने मेरे को फ्रेंड बना लिया। और जब इस प्रकार का वो समझने लगा कि नहीं फ्रेंड बन गया मैं तो बहुत खुशी का अनुभव हुआ उसको। और फिर सर्प ने बोला कि देखो हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है अभी अभी आप क्या करिए आपके अंदर ये जो गुण है ना उसको आप इस बास्केट को काट दो आप काटो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और चूहे ने क्या किया फिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उस बास्केट को काट दिया चूहे ने और जैसे ही काटा और सर्प ने क्या किया ठीक है मैं चेक करता हूँ बाहर निकल सकते हैं कि नहीं और सर्प क्या हुआ उससे बाहर निकला और बाहर निकल के तुरंत ही वापस उस होल के पास वापस आके मुंह बाके खड़ा हो गया अभी आप बाहर निकलो। जैसे ही चूहा बाहर निकला उसको खा लिया उसका काम भी बन गया बाहर भी निकल गया उसका काम भी बन गया। तो भगवान ये बता रहे कि असुरों से मित्रता करो अभी तुम ये मत देखो अपने घमंड अभी तक घमंड था करके तुम तो गिर नीचे गिरा अभी कौन सा घमंड रख रहा है जाओ असुरों से मित्रता करो। एक्चुअली ये समुद्र जो लीला है ना बहुत सारे शिक्षा मिलते है उस पूरा लीला को बहुत बड़ा प्रसंग है समुद्र मंथन का बहुत बड़ा प्रसंग है। लेकिन मैं कुछ विशेष जगह पे जाना चाहता हूँ इसलिए मैं थोड़ा पास चलता हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान के सलाह से इंद्र क्या किया जाके असुरों से मित्रता की और मित्रता करने के पश्चात उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमको समुद्र मंथन करना है उसमें अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत को पान करके तुम लोग भी बलवान हो गए और हमको भी शक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को जब असुरों के सामने रखा गया और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया असुर लोग कथा बहुत लंबा है मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ स्वीकार किया और उन्होंने क्या किया अभी समुद्र को मंथन करना है तो क्या करना पड़ेगा मथनी तो लाना पड़ेगा है ना और ये कोई साधारण मंथन तो था नहीं इसलिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को चुना भगवान के निर्देशानुसार मंदराचल पर्वत को चुना मथनी बनाया उसको है ना वासुकी नाग को रस्सी बनाया करके जब ही मंदराचल पर्वत को असुर और देवता सब मिलकर लेने गए ना वहां पे तो पर्वत था बहुत विशाल पर्वत था तो असुर और देवता दोनों लोग मिलकर उठाए उस पर्वत को उठाए तो उठा के लेके चलने लगे। अभी इतना भारी पर्वत और सब लोग बहुत जोर लगा के उठाए हुए थे सब लोग ताकत लगाए हुए थे अपना असुर लोग भी देवता लोग भी क्योंकि ये जब तक समुद्र के अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक तो मंथन तो होगा नहीं इसलिए बहुत ताकत लगा के उन्होंने उठा के लेके चलने लगे और चलते चलते वो थक गए समुद्र तक नहीं पहुंचे तब तक थक गए वो लोग और थक गए। लेकिन अभी असुर लोग सोच रहे हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो सबको ये लगेगा कि ये जो असुर लोग है कल न्यूज पेपर में आ जाएगा कि ये सब इनके पास शक्ति ही नहीं है। और देवता लोग भी सेम सोच रहे हैं ये कि हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हम छोड़ेंगे तो सबको ये लगेगा कि देवताओं के पास तो बिल्कुल शक्ति ही नहीं है। तो दोनों कंपटीशन में कोई छोड़ा सबका हालत खराब हो गया उठाने में और कोई कंपटीशन में छोड़ा ही नहीं और अंततः क्या हुआ भारी होते गया कब तक करेंगे करके वो मंदराचल पर्वत छोड़ गया गिर गया। चाहते वो लोग तो रख के थोड़ा आराम करके फिर से उठाते लेकिन वो कंपटीशन में कोई नहीं छोड़ा जब तक वो स्वयं से हाथ से सबके छूट के ना गिर गया। और कुछ लोग तो उसमें ना बहुत बड़ा देशभक्ति कर रहे थे वो बीच में खड़े थे और बीच में ऐसा लेके खड़े थे ऐसा उठाए हुए थे और उन लोग तो गिरा तो वो लोग तो खत्म हो गए पूरा और उस पर्वत से सारे देवी देवता सारे असुर सब घायल हो गए कितने सारे लोग मर गए दबके मतलब फिर से भगवान ने उन सबको जीवित करके फिर से लेके गए अभी चलो ठीक है कैसे लेके गए अभी लेके गए और समुद्र तक जब पहुंचे समुद्र में लेके गए और जैसे ही समुद्र में रखा वो डूब गया नीचे अभी इतना मेहनत किया इसके पीछे कितना मेहनत किया और उधर ले जाके डाले और डूब गया वो। चलो ठीक फिर से भगवान ने एक रूप धारण किया कच्छप अवतार लिया। इसके बीच में बहुत सारी शिक्षाएं एक्चुअली मैं कुछ और विशेष चीज पे आना चाहता हूँ इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं। तो डूब गया नीचे तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और नीचे से पर्वत को ऊपर उठाया और उठा के फिर से दिया अभी मथनी जैसे ही वासुकीनाथ को नाग को उन्होंने रस्सी बनाया अभी उसमें भी देवता लोग बोले मैं मुख की तरफ रहूंगा पूछ की तरफ रहूंगा इसमें भी बहुत सारा शिक्षा मिलता है। तो अभी मथनी बनाया और जैसे ही मथना प्रारंभ किया क्या हुआ शुरुआत में ही मथते ही विष निकला तो भगवान इस बात को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बात विशेष करके उन श्लोकों में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं कि देखिए शुरुआत से कितने प्रॉब्लम था, पर्वत लेने गए उधर तकलीफ हुआ, उसके बाद समुद्र में डाले डूब गया उधर तकलीफ, और चलो मथनी शुरू भी हुआ तो क्या हुआ, विष निकला। इस सब सारी समस्याओं का जड़ एक ही था कि उन्होंने भगवान गणपति का पूजा नहीं किया था, उन्होंने गणपति की आराधना नहीं किया था, उनकी पूजा नहीं किया था, इसलिए सारी समस्या है। सुखदेव गोस्वामी पाद श्लोकों में वर्णन करते हैं गणपति की पूजा नहीं किया। सोचिए उस बीच में भगवान है, वहां पे भगवान के निर्देशन अनुसार सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने गणपति की पूजा नहीं किया था, उनसे परमिशन नहीं लिया था, इसलिए इतनी सारी समस्याओं को। सोचिए वो नाग मुख पे खड़े थे देवता लोग, जल के राख हो गए थे। तो इतना समस्या हुआ क्यों, क्योंकि एक ही बस प्रॉब्लम था कि वो गणपति की पूजा नहीं किए थे। तो ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, गणाधिराजा, इस गणपति का नाम वर्णन करते हैं गणाधिराजा, जो कि सड़े सारे गणों को कंट्रोल में रखते हैं, है ना। ये बहुत आसान काम नहीं है सारे गणों को कंट्रोल में रखना। ये गण किसके किसके गण है, शिव जी के गण। अभी ये गण मतलब भूत प्रेत इत्यादि सारे इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि शिव जी इतने बड़े महान भक्त हैं और उनको ये गण लोग ही मिले प्रचार करने के लिए, उन्होंने स्वयं से लिया ये सेवा। क्योंकि पार्वती माता का एक प्रश्न था कि प्रभु इस संसार में इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं और उसको उनको सही कार्यों में लगाने के लिए बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, सब अमेरिका लंदन दुबई पूरे सब जगह प्रचार सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इन भूत प्रेतों को कौन उद्धार करेगा, कौन इन प्रेतों इन गणों का कौन उद्धार करेगा प्रभु। तो जब माता पार्वती ने इस प्रकार का जब दुख व्यक्त किया ना, तो शिव जी बोले कि तुम चिंता मत करो, इन गणों को जो है ना, इन भूतों को मैं कृष्ण भक्ति सिखाऊंगा, कृष्ण तक लेके जाऊंगा। तो उनके जो गण है, जो भूत प्रेत हैं, उनके जो गण इनको कंट्रोल में रखते हैं गणाधिराज, इनको कंट्रोल में गणपति भगवान गणेश जी, गणेश जो है इनको कंट्रोल में रखते हैं, है ना, इन भूत प्रेतों को। भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, कंफर्म कौन होता है, देखा नहीं, हो सकता है इधर बाजू में बैठा हो। तो एक्चुअली जो शिव जी का जो कार्य है ना, चलिए आया है तो थोड़ा सा मैं इसका वर्णन कर ही देता हूँ। शिव जी का जो कार्य है ना, क्या है, इन भूत प्रेतों का उद्धार करना, ठीक है, इन गणों का उद्धार करना, उनको कृष्ण तक पहुंचाना। एक्चुअली ये जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो उनके वो बहुत दयालु होते हैं हर एक जीवों के प्रति। अभी ये भूत प्रेत होते क्या है, ये थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करता हूं। आप जानते हैं कि ये जो मनुष्य को शरीर प्रदान करने वाले कौन है, ब्रह्मा जी, है ना, सृष्टि ब्रह्मा जी की है, है ना, हम जो विसर्ग सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं ना, जब जीवों को शरीर प्रदान करते हैं ना, तो उस शरीर प्रदान करते समय वो उनकी आयु भी निर्धारित कर देते हैं, ये पक्का रहता है, मतलब जन्म के समय मृत्यु कब होनी है वो पक्का रहता है, वो भी लिख देते हैं उसी समय कब मृत्यु होने वाला है। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि भूत प्रेत होते कौन है, इसको लेके बता रहे, तो ध्यान से सुनिए, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि वो जन्म उनके शरीर प्रदान जन्म के समय ही मृत्यु कब होना है उसका डिसाइड कर देते हैं ये ब्रह्मा जी। मान लीजिए 100 साल, एवरेज पकड़िए 100 साल, ऐसा अभी तो कोई जीता नहीं है 100 साल, लेकिन कलयुग में 100 साल, लेकिन धीरे धीरे अल्प बुद्धि अल्प आयु सब कुछ होने जा रहा है, सब चीर्ण हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने, जन्म के समय ही मृत्यु निर्धारित हो गया, लेकिन क्या होता है बीच में कि आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंट, आत्महत्या या हत्या कर देना किसी को। मान लीजिए ब्रह्मा जी ने 100 साल निर्धारित किया, 50 साल के उम्र में ही उस व्यक्ति का किसी कुछ लोग मिलके उनकी हत्या कर देते हैं। तो हत्या करने से क्या होता है, ये जो पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश से बना जो शरीर है ना, ये क्या होता है, चला जाता है, भस्म हो जाता है। बचता क्या है, आत्मा और मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो अभी शरीर तो छूट जाता है ना, आकस्मिक मृत्यु से शरीर छूट जाता है, लेकिन उस आत्मा के लिए कितना निर्धारित किया गया है उस शरीर में रहने का, 100 साल। अभी बचा कितना साल है, 50 साल। तो 50 साल तक वो आत्मा जो है ना उन मन बुद्धि अहंकार के साथ में लेके वो भ्रमण करता रहता, वो विचलित होता रहता है। उसको मुक्ति कब मिलेगा? और 50 साल के बाद, मतलब 50 साल तक वो बहुत तड़पता रहेगा, बहुत तकलीफ में रहता है, क्योंकि उसको स्थूल शरीर चाहिए ही चाहिए। इसलिए कभी कभी क्या देखते हैं कि उसको स्थूल शरीर ढूंढते ढूंढते ना वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए वो व्यक्ति का जो है ना एक्टिविटी बदल जाता है ना, डबल खाने लगता है, कुछ और बोलने लगता है, क्या क्या होने लगता है। तो ऐसे लोग को जो शिव जी पकड़ के वो कृष्ण भक्ति में लगाते हैं और उनका उद्धार करते हैं, ऐसे लोग को। तो इसलिए और विशेषतः ये जो भूत प्रेत है, जो उनको सूक्ष्म शरीर है उसमें बहुत तकलीफ है, उनको स्थूल शरीर में, उस व्यक्ति के स्थूल शरीर में पहुंचते हैं जो तामसिक कार्य करता है ना, संध्या के समय में सोता है, संध्या समय सोना नहीं चाहिए, कभी भी सोना नहीं चाहिए, और मतलब रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, तमोगुण व्यक्ति है ना, इन लोगों के अंदर अक्सर ये पहुंच जाता है, ये सारे जितने भी भूत प्रेत है। तो इतने सारे भूत प्रेत और इतने गणों को शिव जी कृपा करते हैं उनके ऊपर, ये शिव जी बहुत कृपालु है। एक्चुअली वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं ना बहुत ही कृपालु होते हैं। प्रभुपाद जी ने कितने कितने भूत प्रेतों का उद्धार किया, प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे पता चलेगा। प्रभुपाद जी भूत बंगला लिए थे, जहां पे कोई नहीं जाता था, भूत बंगला लिया, वहां पे वो बुक्स को लिखते थे, है ना, बुक्स को लिखते थे और पीछे से कुछ ना कुछ आवाज आता था, आवाज आता था, प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्ण बोलो, क्या कर रहे हरे कृष्ण बोलो इधर आओ, हम ऐसा बोल सकते हैं? मान लीजिए हमारे बीच में कोई एक भूत बैठा हुआ है तो प्रवचन का कौन सा हिस्सा माइंड में जाएगा, वो कुछ एकदम कान खुले ही बंद हो जाएगा, है ना, केवल उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी डरे नहीं, उनको तो भूत बंगला वो सबसे शांति वाला जगह लगा जहां पे वो बुक ट्रांसलेट करते थे। और कितने भूतों को उन्होंने हरे कृष्णा बोल बोल के, वो बोल नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल से बोल बोल के प्रभुपाद ने उनको भगवत धाम भेज दिया। ये शिव जी का कार्य है, शिव जी यही करते हैं, इतने जितने भी भटकती आत्माएं है ना उनको कृष्ण के चरणों तक लेके जाते भगवान के। और इन गणों को सोचिए कितने भयंकर लोग हैं, इन गणों को कंट्रोल करने के लिए कौन है? गणेश जी, भगवान शिव जी ने गणेश जी को यह सेवा दिया हुआ है, उनको कंट्रोल में रखना है ना। तो इसलिए गणेश जी का जो ये जो सेवा है बहुत महत्वपूर्ण है ना, गणों को कंट्रोल करना। और गणेश जी का जन्म के विषय में कोई जानते हैं? गणेश जी के कोई जानते हैं? गणेश जी के जन्म के विषय में नहीं, गणेश जी का जन्म कोई भी नहीं जानता है? हाँ, एक्चुअली कई कथाएं हैं, उसमें से एक कथा है बहुत मुझे भी बहुत रोचक लगा, एक्चुअली पढ़ रहा था। तो हाँ, तो माता पार्वती, एक बार के घटना है कि माता पार्वती अपने शरीर में बहुत सारे चंदन हल्दी केसर युक्त सारे लेपन की हुई थी। लेपन करने के पश्चात अभी जब उनको नहाना हुआ तो गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। गंगा स्नान के लिए गई तो गंगा स्नान करते समय उन्होंने क्या किया, अपने जो इस अंगराज जो उन्होंने लगाया हुआ था उसको उन्होंने निकाला, हाथ में लिया, पूरा हाथ में लेके उन्होंने क्या किया, उसको विसर्जन करना तो उससे पहले उन्होंने उस अंगराग को क्या किया, एक बालक का रूप देकर उन्होंने विसर्जन कर दिया। ये विसर्जन की प्रथा वहीं से आ रही है क्या? मुझे अभी क्लिक हुआ ऐसा तो नहीं विसर्जन की प्रथा वहीं से आ रही है, पता नहीं, ये रॉन्ग है एक्चुअली, विसर्जन वगैरह करना ये ठीक नहीं है। तो जैसे ही मैंने अभी बताया कि गणेश जो ना कृष्ण भी बन के आ जाते हैं, है ना, कृष्ण भी आते हैं, तभी देखिए वो ये जो पास टाइम है ना ये प्रदर्शित करता है कि भगवान कृष्ण आए। जब भी जैसे ही माता पार्वती ने उस बालक का जो रूप दिया हुआ था हल्दी चंदन केसर युक्त, तो उन्होंने जैसे ही गंगा में अर्पण किया तुरंत ही, और अर्पण करने के बाद वो भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, उनकी स्तुति करने लगी। तो स्नान के समय अक्सर इस प्रकार के होता है, और वो स्तुतियां करने लगी, और स्तुतियां करते समय ही तुरंत ही भगवान उस बालक के रूप में आ गए। भगवान वो जो विसर्जन किया था उसमें भगवान स्वयं आ गए, और जैसे ही वो बालक का रूप ले लिया तुरंत ही गंगा जी ने क्या किया, उस बालक को लेकर तुरंत ही माता पार्वती के पास लेकर आ जाते हैं कि माता ये आपका पुत्र है। इसलिए उस बालक का नाम पढ़ाना, गणेश जी का एक नाम है गांगे, है गांगे, क्योंकि गंगा से उत्पन्न हुए, गंगा देवी स्वयं लेकर आई, तो पार्वती माता पार्वती के इस प्रार्थना से भगवान स्वयं उस रूप में, जैसे कि देवकी और वसुदेव की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए है ना, पहले चार पूजा रूप में वहां प्रकट हो गए, उसके बाद गर्भ में गए। तो ऐसा ही भगवान को आना था और इस प्रकार का जब भी हुआ अंगराग को उन्होंने इस प्रकार का किया और भगवान स्वयं स्तुति किया, भगवान स्वयं उसमें प्रकट हो गए और गंगा जी उनको लाके दी तिल, और जैसे ही दिया कि हे माते आपका पुत्र है, और जैसे ही गंगा माता ने पार्वती जी को बोला तुरंत ही माता पार्वती के अस्तनों से दूध निकलने लगा और तुरंत ही माता पार्वती ने उनको एक्सेप्ट किया और लेके चली गई। कुछ दिनों उस समय शिव जी प्रचारक हैं, प्रचार में कहीं गए हुए थे, कुछ दिनों के बहुत दिनों के पश्चात आए, बहुत दिनों के पश्चात जब आए शिव जी तो उस समय माता पार्वती स्नान कर रही थी और इस बालक को उन्होंने गेट पे खड़ा किया हुआ था, गेट पे खड़ा किया हुआ था कि किसी को अंदर मत आने देना मैं जब तक नहीं बोलती हूँ। तो वो बालक गेट पे खड़ा हो गया, गांगे गेट पे खड़ा हो गया और उसी समय शिव जी आए, और शिव जी आए और जैसे ही गए तो बालक ने रुक गया, अभी मत जाओ माता स्नान कर रही है। तो शिव जी बार बार बोल रहे अरे मेरा ही घर है, मेरे ही घर में एंट्री मारने से रुकता है। तो बालक ने सुना ही नहीं, बोला कि नहीं मुझे आदेश है माता का कि जब तक मेरा परमिशन नहीं हो, जब तक मैं नहीं बोलू तब तक किसी को अंदर एंट्री मारने ही नहीं देना। तो जिद कर लिया और शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपने त्रिशूल से उसके बालक का मस्तक को उड़ा डाला। और जब माता पार्वती स्नान करके जब बाहर देखी दृश्य, तुरंत ही माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई है ना, एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई है ना। अभी उनके क्रोध को देखकर शिव जी को टेंशन होने लगा और तुरंत ही अपने गणों को बुलाया, गणों को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग जाओ कोई भी मनुष्य जो तुमको पहले दिखता है उसके सर को लेकर आओ, किसी भी मनुष्य का जो पहले पहले जो दिखेगा, अभी वो पहले कौन दिखेगा उसके सर को क्यों उड़ाया उसका भी कथा है, वो सब उधर नहीं जाएंगे हम। तो शिव जी का ये आदेश गणों को कि तुम जाओ जो मनुष्य तुमको पहले दिखेगा उसका सर को काट के लेकर आना, और वो लोगों ने गए और सर को काट कर लेकर आया। अभी प्रश्न ये उठता है कि शिव जी ने बोला था कोई मनुष्य का, ते हाथी का सिर क्यों लेकर आ गए, एक्चुअली में हाथी का सिर है ही नहीं गणेश जी को, ये हमारा सोचना मूर्खता है कि गणेश जी को हाथी का सर है, हाथी का सर नहीं है, जानवर का सर नहीं है, वो मनुष्य का सर है। मैं आपको बताता हूं पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जलजा नौ लक्षणी स्थावरा लक्ष्य विंसादी कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दस लक्षणम त्रिसन लक्षणी पशु चतुर्लक्षणी माशा, कितने प्रकार की योनियां है, 84 लाख प्रकार की योनियां सब लोग जानते हैं, अभी गिनिए है। जलजा नौ लक्षणी जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के है ना, स्थावरा लक्ष्य विंसादी और स्थावर पे रहने वाले कितना 20 लाख प्रकार के, क्रिमयो रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, है ना, और पक्षिणाम 10 लक्षणम 10 लाख प्रकार की पक्षियां हैं, और त्रिचल लक्षाणी पशु मतलब चार पैर वाले पशु जो है, पशु चार पैर वाले कितना 30 लाख प्रकार के हैं, और चतुर लक्षाणी मानुष जो मनुष्य योनि जो है वो 4 लाख प्रकार के है, तो उसमें से एक योनि जो है वो विनायक योनि है, जो कि उस विनायक योनि में जो मनुष्यों का सिर होता है ना वैसा होता है ना, वो सिर ऐसा होता है, विनायक योनि जो है 84 लाख की योनियों में से जो विनायक योनि है, उस विनायक योनि योनियों में से जो सर्वप्रथम मनुष्य मिला उन गणों को, वो विनायक योनि का मनुष्य मिला, इसलिए उनका सर काटकर वो लोग लेकर आ गए। नहीं अभी हाँ किसी और लोक में, लेकिन अभी इसी पृथ्वी पर देख लीजिए कितने प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार है, कभी कई जगह का हम ऐसे फोटो देखते हैं कि वहां के वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं लगते हैं, और अलग लोगों का और दूसरे लोगों में भी अलग अलग, जैसे कि किम पुरुष हनुमान जी, वो उनको बंदर का मुख थोड़ी ना है, मनुष्य का रूप है, वो बंदर नहीं है, बंदर का मुख नहीं है, हनुमान जी को मनुष्य का रूप है, किम पुरुष लोग के है वो, किम पुरुष लोग के हनुमान जी है, किन्नर इत्यादि आदि लोग है, तो उनके लोग अलग है। तो ऐसे ही विनायक योनि जो है ना, इसलिए गणेश जी का एक नाम है विनायक है ना, गणेश जी जो है का जो सर लाया गया ना, उनको लगाया गया ना, वो विनायक योनि का सर था, वो है मनुष्य है, तो उनको हाथी का सर नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बताते हैं कि द्वंदे विनिधाय कुंभ, कि जो दो दो मस्तकों से, दो मस्तक मतलब वर्णन कुंभ, कुंभ का वर्णन करते हैं कि अच्छा मुकुट लगा हुआ है, तो गणेश जी को दो कुंभ है, जैसे कहते हैं हाथी, हाथी के सर पे रहता है ना थोड़ा सा ऐसा दो कुंभ है, तो उसका वर्णन करते हैं, वो मुकुट लगा हुआ नहीं तो दिखता है, दो कुंभ है तो वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी की वो अपने दोनों कुंभों से भगवान को प्रणाम करके वहां से वो शक्ति को अर्जित करते हैं गणेश जी, है ना। द्वंदे विनिधाय कुंभ, दोनों मस्तकों से, और यद पाद पल्लव, है ना, वो भगवान के शरणागत होकर वहां से शक्ति अर्जित करते हैं, और फिर वह लोगों की जो विघ्न को दूर करने के लिए, है ना, वो ये शक्ति अर्जित करते हैं, इसलिए उनका विघ्न विनाशक नाम भी है, है ना, विघ्नों को दूर करने वाले, इसलिए आदि पूज्यम मतलब वह गणेश जी है ना, जिनके इष्ट देव नरसिंह, मैं पहले ही बताया कि नरसिंह देव को प्रसन्न करना है तो बहुत आसान तरीका है कि गणेश जी को प्रसन्न करिए, है ना, गणेश जी को प्रसन्न करिए, नरसिंह देव प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए। और गणेश जी का एक नाम है गजकर्णक, गजकर्णक गणेश जी का नाम है, इसलिए क्योंकि उनका जो कान है ना गज हाथी के जैसा है, हाथी का नहीं है ये माइंड से निकाल दीजिए, हाँ हाथी का नहीं है वो, विनायक योनि का सर है लेकिन मनुष्य योनि ही है वो, तो गजकर्ण, ये जो गजकर्ण है ना, ये जो कर्ण ना है, ये गणेश जी की स्वयं की इच्छा थी एक्चुअली, हाँ, कि उनको इतना बड़ा कान दीजिए, क्योंकि छोटा कान ना वो भगवान आपकी कथा को सुनने के लिए ना ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं, ब्रह्मा जी इस प्रकार की बहुत सारी स्तुतियां की हुई है, है ना, ये प्लग क्यों दिया हुआ है, गोपियों ने भी स्तुतियां की हुई है, इस प्रकार गणेश जी ने किया, हाँ, कि हमको ये जो कान है ना बहुत छोटे पड़ जा रहे हैं, इसलिए हमको बड़ा कान दीजिए, तो भगवान उनको बड़ा कान दिया, है ना, कथा सुनने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उन गणेश जी को लोग क्या क्या करते हैं, एक्चुअली देखिए मेरा पर्सनल व्यक्ति बताता हूँ मंतव्य कि गणेश जी के एक्चुअली दर्शन करने के लिए मैं भी बहुत लालायित रहता था, अभी भी हूँ, मंदिर में मैं मीरा रोड में रहता भी था ना, तो अक्सर हफ्ते में या हफ्ते में दो दिन भी हो जाता था, नजदीक हम फूल लेने जाते थे, तो फूल लेने जाते थे दादा मार्केट वो बाजू में ही सिद्ध विनायक, हम दर्शन करके, और सुबह सुबह कोई गर्दी नहीं और टाइम पे आ जाता, कोई लेट भी नहीं होता था, दर्शन करके ही आते थे। लेकिन क्या हुआ, आज संसार के लोग गणेश जी की उपासना इतना बुरी रूप से करते हैं ना कि वहां पे हमको जाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली एक आचार्य लिखते हैं कि ऐसी जगह पे तो भगवान गणेश तो रहते ही नहीं है, ऐसी जगह पे उनके, हाँ रहते हैं उनके गण रहते हैं, है ना, इसलिए उस जगह का प्रसाद भी पाना ना, हाँ प्रसाद मिला लेकिन गणों का प्रसाद मिलेगा, क्योंकि जहां पे फिल्मी गाना चलाया जाता है, जहां पे इस प्रकार से मदिरा पान किया जाता है, जुआ खेला जाता है रात भर, ऐसी जगह पे गणेश जी कैसे रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। गणेश जी तो ऐसी जगह पे रहेंगे ना जहां पे उनकी सेवा पूजा हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी जगह पे उपस्थित रहेंगे ना गणेश जी, वहां पे रहेंगे, तो वर्णन यही करते हैं कि वहां पे उनके गण लोग रहते हैं, गण लोग रहते हैं और वो गण का प्रसाद मिलता है, इसलिए इसलिए बुद्धि भ्रमित हो जाता है लोगों का, गणों का प्रसाद खा के तो इसलिए गणेश जी का उपासना करे तो हमको व्यवस्थित ढंग से जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया उस प्रकार से उपासना करना चाहिए। हम कितना सुने कि आदि पूज्यम, जीव गोस्वामी पास बताते कि आदि पूज्यम प्रथम पूजनीय है, पूजिए घर में रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको व्यवस्थित ढंग से उनकी पूजा करिए, लेकिन इस प्रकार से जो कलयुग का जो प्रभाव है बहुत प्रबल है, उनको विसर्जन का दारू पीते हैं, शराब पी के क्या क्या करते हैं, तो ऐसे जगह पे मन भी इच्छा भी करता है तो जा नहीं पाते हैं एक्चुअली, है ना, कितना सुंदर वातावरण होता है सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में आज गणेश जी को उपासना कितना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हर एक सोसाइटी में गणेश जी को उपासना कितनी सुंदर बात है, लेकिन उसको आज कोई इन लोगों को ज्ञान देने के लिए है नहीं कोई, नहीं तो कितना सुंदर कितना अच्छा होता था ये गणेश उत्सव। तो इस प्रकार से जो गणेश जी है जो वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान, इसलिए देखिए कोई भी गणेश जी का आरती भी गाते हैं तो लास्ट में क्या गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना, उल्टा ही सही, उल्टा नहीं एक्चुअली ये सीधा है, वेद का मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको घुमा दिया क्योंकि उनको मालूम था ये कलयुग के पापी लोग ना ये वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये केवल दुख भोगेंगे, पाप करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं बदल दिया थोड़ा से, है ना, ये तो प्रश्न है। देखिए सबको जो बोलते हैं ना लास्ट में क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना लास्ट में, यही बोलते हैं उनके। लेकिन एक और बोलना होता है, लोगों को ज्ञान नहीं है, है ना। अंतिम अंतिम जब कंप्लीट होता है ना, मैं आगे वर्णन बताता हूँ कि किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं और कितना अच्छा सुंदर भाव है कंप्लीट करने के पीछे। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो केवल गाते हैं बस, तोते की तरह बस, है ना। तो गणेश जी एक्चुअली में देखा जाए तो परम, जो परम वैष्णव है, भगवान स्वयं, भगवान स्वयं, भगवान बोल सकते हैं उनको, भगवान स्वयं है, गणेश के रूप में आते हैं, है ना। और वो कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं। व्यास देव जी ने जब ये जितने भी वेद शास्त्र भागवत महापुराण इन सबको उन्होंने तो रचना किया, लेकिन लिपिबद्ध नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था। तो उस समय उन्होंने देखा कि इस कलयुग के जो जीव है ना, ये इतना मंद सुमंद, मतलब मंद भाग्य उपाध्याय, सबकी जो बुद्धि है वो इतनी मंद रहेगी ना, वो सुन के शास्त्रों को कभी भी अपने पास रखने का अमल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेद व्यास ने सोचा कि इसको लिखित रूप में होना चाहिए। तो लिखित में कौन लिख सकता है सोचिए, तो उन्होंने चुना कि ये और कोई नहीं लिख सकता है, गणेश जी ही लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी के पास प्रस्ताव रखा कि आप इन ग्रंथों, इन वेद शास्त्रों, भागवत महापुराण को लिपिबद्ध कीजिए। तो गणेश जी का भी एक शर्त था कि मैं लिखूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू अगर भागवत कथा को करते रहेंगे ना, तो मैं उसको लिपिबद्ध कर दूंगा, आप बीच में स्टॉप मत करिएगा। वेद व्यास जी का भी प्रस्ताव कि मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है कि आप जो भी लिखेंगे समझ के लिखेंगे, मैं जो बोला आप लिख नहीं देंगे, ऐसा समझ के लिखेंगे। तो गणपति जी ने बोला कि ठीक है, मैं समझ के लिखूंगा। और ऐसा वर्णन आता है कि गणेश जी लिख रहे हैं, गंगा की धारा की तरह कथा चल रही है और गणेश जी उसको समझ के लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये बद्रिकाश्रम की बात है, जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे ना, वो व्यास गुफा के पास गए रहेंगे, वो यहाँ की वहां की घटना है। गए थे आप लोग? कौन गया था आप? नहीं, कोई नहीं गया बद्रीनाथ, तो कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। बद्रिकाश्रम में आज भी वो जगह है जहां पे गणेश जी ने लिखा है बद्रीनाथ में। तो गंगा की तरह, गंगा की धारा की तरह सुखदेव व्यास देव जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि वो क्या हुआ, बीच में स्याही खत्म हो गया, अभी स्याही खत्म हो गया तो अभी कहाँ जाएंगे, नीचे उतर के हरिद्वार में आके पेन कलम स्याही लेने जाएंगे, तब तक तो फिर कथा रुक जाएगी। और उस समय भागवत महापुराण को लिख रहे थे और सुखदेव गोसाई बोलते जा रहे, बोलते जा रहे हैं। तो कथा, भगवान की कथा को कैसे रोक सकते हैं, हाँ, इस पे विचार करते ही तुरंत ही गणपति गणेश जी ने क्या किया, तुरंत ही अपने हाथ से वज्र प्राप्त किया अपने अपने दांत के ऊपर। इसलिए गणेश जी का दांत टूटा हुआ है, पता है, दांत के ऊपर प्रहार किया और उसको कलम बनाया और पत्थर के ऊपर लिखना चालू कर दिया। वो पत्थर के ऊपर लिखे हुए वो पत्थर भी आ जाए, वहां पे लिखा हुआ है। तो ये गणपति गणेश जी है ना। वेद व्यास जी ने, क्योंकि ये स्वयं भगवान का कार्य हो सकता है इस प्रकार का करना, तो इसलिए उन्होंने गणेश जी को चुना। इसलिए हमको ना कभी भी गणेश के विषय में जब हम स्मरण करते हैं ना, उनके प्रति थोड़ा भी निराभाव नहीं होना चाहिए, हम उनको भगवान के रूप में पूजित कर सकते हैं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से हमको करना, उनको जानना, कौन से तत्व उनको जानना चाहिए हमको। तो चलो भागवत का तो छोड़ो, अभी जनरली लोग आरती करते हैं, है ना, आरती करते हैं तो देखिए उसमें लास्ट में एक श्लोक का वर्णन करते हैं। चलो उस श्लोक का सबको मालूम है, उस श्लोक, चलो सब लोग साथ में बोलिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसितः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है लास्ट में बोलते है ना। कितना बड़े सिद्धांत को बोलते बताए, मैं अभी अभी इसके ऊपर मैं कभी प्रवचन करूंगा, कायन वाचा के ऊपर एक एक प्रवचन पूरा सेपरेट कभी तो करूंगा इसके ऊपर। मैं पढ़ रहा था, मतलब संतुष्टि नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं, अभी टाइम हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। अभी कितने बड़े सिद्धांत, ये कौन सा श्लोक है पता है किसी को, कहाँ से है श्लोक? सबको ऐसा लगता है कि हाँ, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश कथा में कहीं तो होगा, गणेश जी के कहीं किसी ग्रंथों में, ऐसा नहीं। ये श्लोक जो है ना कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुसितः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। इस जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक है, उसको पढ़िए। श्लोक को वो श्लोक मैं प्रसंग बता देता हूं कि वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा। ये श्लोक ऋषभ देव के पुत्र हुए नव योगेंद्र है ना, वो नव योगेंद्र जब भ्रमण कर रहे थे आकाश में, भ्रमण करते करते वो जब जनकपुर के ऊपर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे निमि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे वहां पे उन्होंने तुरंत वो सारे नव योगेंद्र जो है वहां पे रुके और निमि महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा। किसके बारे में पूछा? सनातन धर्म के बारे में प्रश्न पूछा। सनातन धर्म का उपदेश देते हुए वो नव योगेंद्र में से एक जो योगेंद्र है, ये नव योगेंद्र कौन है? ऋषभ, भगवान ऋषभ देव के पुत्र है नव। वो नव योगेंद्रों ने सनातन धर्म का उत्तर देते हुए इस श्लोक को रखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सनातन धर्म क्या है इसके बारे में वर्णन है। चलिए तो एक एक वर्ड को हम देख लेते हैं। कायेन, कायेन मतलब षष्ठी विभक्ति है ना, शरीर। कायेन वाचा वाणी है ना, शरीर से और वाणी से। और मनसेन्द्रियवा, मन से और इंद्रियों से है ना, बुद्ध्यात्मना अपने बुद्धि से। और स्वभावात, अपने स्वभाव से। करोति यद्यत् सकलं परस्मे, करोति मतलब करना, यद्यत् मतलब जो जो भी, जो कुछ भी हम अपने काया मन वाणी इंद्रिय स्वभाव से जो कुछ भी करते हैं वो क्या करना है? नारायणेति समर्पयेत। अगर गणेश जी कहते हैं कि अगर मुझे प्रसन्न, वास्तव में मुझे प्रसन्न करना है तो ये कार्य करो। सब लोग गाते भी है लेकिन इस अर्थ नहीं पता है, गाते भी है, सब लोग गाते भी हैं। तो गणेश जी को वास्तविक में प्रसन्न करना है तो उनको अर्पण करना है अपने मन, मन बुद्धि वाणी तन मन धन सब किसके? नारायण के समर्पण हो जाना है। तो रियल में गणेश जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो और प्रभुपाद जी भी विशेष करके प्रश्न उठता है कि अगर गणेश जी का इतना हमारे वैष्णव समाज में या फिर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उनकी आदि पूजा होना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं स्थापना किया? हम मंदिर के साथ में गणेश जी का भी रख सकते थे। प्रभुपाद जी ने स्थापना किया है हर मंदिरों में। एक्चुअली प्रभुपाद जी जब वृंदावन मंदिर का निर्माण कराया तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि वृंदावन मंदिर के गेट पे गणेश जी का मंदिर हो, बहुत इच्छा थी उनकी। और उन्होंने ऑलमोस्ट ना इसका प्लान कर लिया था कि एक मंदिर जो है गेट पे वो गणेश जी का होना चाहिए। आदि पूज्यम, मैं बोला ना जीव गोस्वामी पाद इस बात को बताया, आदि पूज्यम पूज्य जो पहले पूजनीय होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने विचार किया कि ये जो कलयुग, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा फ्यूचर का देखते हैं, कलयुग के जो उस समय भी देख ही रहे थे, कलयुग के जो जीव है उनकी कैसी बुद्धि है, मंद सुमंद मदयो मंद भाग्या, सबकी बुद्धि किस प्रकार से है। और ज्यादातर वो देवताओं के उपासक है, सभी लोग देवताओं के उपासक हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे ये गणेश जी की स्थापना करना, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये विचार किया कि अगर गणेश जी की स्थापना अगर मंदिर के गेट पे कर दिया जाए, क्योंकि उनको गेट पे मतलब फ्रंट में ही रखना रहता है क्योंकि विघ्न विनाशक हैं उनको, तो क्या होगा कि लोग आएंगे और गणेश जी का दर्शन करेंगे और चले जाएंगे, तो क्या होगा? और बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि उधर परम पुरुष उधर बैठे हुए हैं और गणेश जी की क्या इच्छा है कि परम पुरुष तक किसी भी जीव को पहुंचाना है, और उधर बैठे हुए वो व्यक्ति वहां दर्शन करेगा और निकल जाएगा, कितना बड़ा वो तो और गिर जाएगा नीचे। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर को नहीं रखा गणेश जी का, और उन्होंने द्वार पे हर एक द्वार पे गणेश जी की स्थापना किया। मन से गणेश जी को प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद जी ने स्थापना किया। ये भाव है ना, और तो हर मंदिर में गणेश जी की स्थापना होती ही होती है। अभी देखो, अभी चौपाटी मंदिर आप जाएंगे तो गेट के अंदर एंट्री मारेंगे तो गणेश जी का है विग्रह है ना, वहां पे रखा हुआ है, गणेश जी का दर्शन पहले होता है। भगवान से पहले, लेकिन उन लोगों ने इस प्रकार का व्यवस्था अपना बना के रखा हुआ है कि गणेश जी का दर्शन करने के बाद जाते ही जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, उनको वहीं से घूम नहीं जाते हैं, ऐसे लोग को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ऐसा। तो प्रभुपाद जी भी हमेशा उनको था कि मंदिरों में इस प्रकार का गणेश जी का स्थापना हो, क्योंकि वो आदि पूज्य है, जीव गोस्वामी बाद इस बात को बोलते हैं आदि पूज्य, पहले उनकी पूजा होना चाहिए। अभी एक विशेष बात बोलकर मैं इस सत्र को विराम दूंगा कि गणेश जी से हमको क्या मांगना चाहिए, है ना। बहुत पवित्र दिन है आज के दिन, तो कितना प्रसन्न रहते हो, क्या मांगना चाहिए गणेश जी से, है ना। तो रामायण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जहां पे वो प्रसंग है, वो प्रसंग को मैं पढ़ रहा था तो बहुत बहुत अच्छा लगा प्रसंग, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं हृदय को जो है ना छू रहा था बहुत प्रसंग है। वैसे रामायण के हर एक प्रसंग ही ऐसा है, एक्चुअली रुला देने वाले भी प्रसंग हुए बहुत सारे, हृदय को लग जाता है, इसी प्रकार के रामायण की कथाएं हैं। तो रामायण में हम देखते हैं कि उस समय की घटना की, जो भी विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर कहां पे जनकपुर जाते हैं, क्यों जाते हैं जनकपुर, वहां पे सीता स्वयंवर था वहां पे, है ना। वो स्वयंवर को अटेंड करने के लिए लेकर विश्वामित्र मुनि वहां पे जाते हैं, और वहां पे विवाह के लिए जो राजा जनक ने प्रस्ताव रखा था, क्या रखा था प्रस्ताव, शिव धनुष जो तोड़ेगा उसको पुत्री, उनकी पुत्री उसे वो दे देंगे, विवाह होगा, है ना। क्योंकि जनक महाराज ने देखा था एक्चुअली शिव धनुष का जो महिमा, वो जानते ही थे। एक्चुअली जो शिव धनुष था, संसार में तीन धनुष बहुत फेमस हुए, कौन कौन से किसको पता है, भगवान विष्णु का जो धनुष है कौन सा धनुष है, उसका नाम क्या है, सारंग। भगवान विष्णु का धनुष सारंग, और अर्जुन का धनुष गांडीव, और शिव जी का धनुष क्या, पिनाक, ये बहुत फेमस हुए। और ये शिव जी जो है ना इस धनुष को परशुराम को दिया, और परशुराम ने राजा जनक जी को दिया, और उस जनकपुरी में आने के लिए जनक महाराज ने बहुत सारे सैनिकों को, ये हजारों लाखों लोग को भेजा था उस धनुष को लाने के लिए, परशुराम के घर से जनकपुर में डिलीवरी कराने के लिए उस धनुष को कितने लोगों को भेजा था उन्होंने, और वो लेकर आए थे, और वो जनकपुर में जो वो जनकपुर में जनक जी के इधर धनुष को रखा गया था। जनक महाराज ने ये प्रस्ताव क्यों रखा बताया, कि जो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे शादी कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सीता की महिमा देखी थी, वो देखे कि जिस धनुष को लाने के लिए इतना मेहनत किया गया, उस धनुष को सीता केवल उठा के ऐसा रख के झाड़ू मारा, और तुरंत ही वो समझ गए कि कोई साधारण स्त्री है नहीं, साधारण स्त्री नहीं है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि जब तक कोई ऐसा योद्धा नहीं आएगा जो कि इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं देगा, तब तक मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने इस प्रकार से बड़ा स्वयंवर रखा, प्रस्ताव रखा, बड़े बड़े राजा लोग सब उस स्वयंवर में भाग लिए सीता को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे राजा महाराज हर एक जगह के, सब राजा लोग उस जनकपुरी उस स्वयंवर सभा में सब लोग वहां पे प्रस्तुत हुए, है ना। और सब करके वो जाके वो क्या किए, उस धनुष को उठाना कोई शुरू किए, है ना। रामायण में वर्णन है कि भूमि सहस्त्र एक ही बारा लगे उठावन हरि तरही न टारा, विगति न शंभु चराचर कैसे, कामी वचन सही मन जैसे सती मन जैसे। कि ये जो सहस्त्र लोग एक नहीं दो दो लोग साथ में मिलके, सहस्त्र हजारों हजारों लोग मिलकर उस धनुष को उठाए, इतने सारे राजा महाराजा रहे, लेकिन वो धनुष हिला तक नहीं। और वर्णन करते हैं रामायण में कि कैसे, जैसे एक सती स्त्री के मन को कोई कामी पुरुष उसको विचलित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये जो धनुष था हजारों लाखों हजारों सहस्त्र लोग के, है ना, भूमि सहस्त्र एक ही बार सहस्त्र सहस्त्र लोग उस धनुष को उठाने के लिए हिलाने के लिए गए, लेकिन वो धनुष हिला ही नहीं बिल्कुल। तो अभी सब लोग परेशान हो चुके है ना, लेकिन माता सीता तो पहले ही भगवान राम को उस वाटिका में ही जब देख लिया था उनको आते समय, तभी से उन्होंने अपना पति को भगवान राम को मान चुकी थी। लेकिन अभी पिताजी ने इतना बड़ा स्वयंवर रचा हुआ है, प्रस्ताव रखा हुआ है, अभी तो उनको ये झेलना ही पड़ेगा। तो अभी जितने भी राजा महाराजा आते थे ना सीता जी, अतने उनको डर था कहीं ये लोग हिला न ले, कहीं उठा न ले, इस प्रकार का डर था। अंदर। तो इस प्रकार से सारे जो राजा थे सब लोग मिल मिलकर उठा उठा के परेशान हो गए हुए नहीं, तो उस समय विश्वामित्र का भगवान राम को आदेश दिया कि जाओ उस सभा में। जब भगवान राम जब चलने लगे, उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है कि जब धनुष को तोड़ने के लिए निकले, भगवान राम उठाने के लिए निकले अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश प्राप्त करके, तब जब निकले तो उस समय सीता की क्या स्थिति थी पता है? सीता उस समय तुरंत ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। किसकी प्रार्थना करने लगी? गणेश जी की प्रार्थना करने लगी सीता। और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए गणदायक भरदायक देवा आज लगे हूं तो सेवा। गणदायक भरदायक देवा, गणेश सीता माता जब भगवान राम जब चलने लगे, क्योंकि उनको कैसा था क्या विचार था कि अभी हमको राम मिलना ही चाहिए है ना, धनुष को उठाए धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएंगे क्योंकि इतने सारे राजा तो आके जा चुके, तभी भगवान राम हमको प्राप्त हो करके सीता माता बहुत हृदय पूर्वक प्रार्थना करे। सोचे कौन प्रार्थना कर रहा है गणेश जी का, माता सीता जो सबकी जननी है, जिनके नित्य भगवान राम जो जिनके नित्य पति के रूप में है, ऐसी सीता माता प्रार्थना कर रही है उस समय जब भगवान राम उस धनुष को तोड़ने उठाने के लिए उस धनुष के पास चलकर आ रहे थे। तो बहुत ही तीव्रता से माता गणपति जी का स्मरण करने लगी कि हे गणेश जी मैं आज के दिन पे इतनी आपकी देव तपस्या इतनी पूजा किया इतनी सेवा पूजा किया वो आज के दिन के लिए किया था मैंने। तो ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बात प्रस्तुत होता है कि हमको अगर कृष्ण चाहिए, हमको राम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो हमको गणपति भगवान गणेश जी की पूजा और उनकी कृपा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। माता सीता इस बात को स्मरण करते हो रो रही थी, हो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आज हमारे ऊपर कृपा करिए, आज तक मैंने जो आपकी सेवा आराधना पूजा की वो आज के दिन के लिए किया मैंने। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता सीता बहुत हृदय पूर्वक प्रार्थना करने लगी गणपति गणेश जी का। तो ये गणेश जी का जो है हमारे जीवन हमारे भक्त भक्तों के जीवन बहुत विशेष महत्व रखते हैं गणपति जी। हमारे भक्ति मार्ग में कितने विघ्न आते हैं और विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी। हम अच्छा है हम उनके इष्ट देव नरसिंह देव के उपासक है, नरसिंह देव की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम नरसिंह देव को उपासना करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गणेश को नेग्लेक्ट करें, है ना, अपराध होगा और उससे हम नरसिंह देव को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्चुअली में नरसिंह देव को भी खुश करना है ना, हमको गणेश जी को छू ही जाना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो समय हो गया काफी, प्रभु जी को सेवा में भी जाना है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गणेश जी की जय, गणेश चतुर्थी की जय। हम नरसिंह आरती गाते हुए समाप्त करते हैं, है ना, गाओ कोई नरसिंह आरती गाओ।
नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, मोर अच्छा ta ललिता हिरण्यकशिपु तनु वेङ्गा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
सिंहदेव जी की सिंहदेव भगवान की जय वक्रराज प्रहलाद महाराज की शील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।